नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू। केरल में भूस्खलन से प्रभावित वायनाड में तलाश अभियान जोरों पर, मृतकों की संख्या 300 हुई। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी। हिमाचल प्रदेश में भी लापता लोगों की तलाश जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के खतरों से इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय तीरंदाज मिक्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज शाम भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चाओ तियनचेन से होगा। और भारत तथा श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कोलंबो में अब से कुछ देर बाद। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और डॉ मनसुख मांडविया भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और विभिन्न खंडों या सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा माय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक वृक्ष मां के नाम तथा प्राकृतिक खेती जैसे कई अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीएई का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ की अध्यक्षता में त्रिवार्षिक सम्मेलन आज शुरू हुआ और ये 7 अगस्त को सम्पन्न होगा। इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष के बाद भारत में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के समक्ष टिकाऊ कृषि से संबंधित चुनौतियों से निपटना है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने अब तक 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पायरेसी पर आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मुरुगन ने कहा कि ओटीटी सामग्री की निगरानी के लिए दिशा निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में आयु के अनुरूप सामग्री के प्रमाणीकरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि माता पिता के मार्गदर्शन के साथ साथ सामग्री वर्गीकरण के लिए स्वप्रमाणन को रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने वर्ष 2019 से अब तक कुल 9,922 संदेशों को फर्जी खबर के रूप में उजागर किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। डॉ एल मुरुगन ने भ्रमित करने वाले समाचारों को एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि ऐसी फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण होना आवश्यक है। गलत सूचनाओं के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार से जुड़ी कोई भी बात सही है या गलत, इस बारे में केवल सरकार ही बता सकती है। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तथ्यों को जांचने का संबंध भारत सरकार से है। अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक संपत्ति है। सरकार ने कहा है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना चाहती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक पूरक उत्तर में बताया कि सरकार इन अस्पतालों में श्रेष्ठ चिकित्सकों को नियुक्त करने के लिए प्रयासरत है और इसमें कुछ समय लग सकता है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त आपूर्ति के लिए कोविड टीकों की खरीद पर लगभग 36,398 करोड़ रूपये का कुल खर्च किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही। श्री जाधव ने कहा कि देश भर में अब तक 220 करोड़ से अधिक कोविड 19 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज गति से चल रहा है क्योंकि 320 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना वर्तमान में जापानी सहयोग से अहमदाबाद और मुंबई के बीच निर्माणाधीन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव कार्य आज दूसरे दिन भी जारी है। केदारनाथ से अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय सेना के चिनुक और MI-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव अभियान और तेजी से चलाया जा रहा है।
केदारनाथ पवन मार्ग के प्रभावित क्षेत्रों से प्रशासन ने SDRF, NDRF और पुलिस की मदद से लगभग 3,300 लोगों को पैदल मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचाया है, जबकि 700 से अधिक लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। भीमबली और लिंचोली से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट कर शेरसी और गुप्तकाशी पहुंचाया जा रहा है। यहां अभी भी करीब 500 तीर्थयात्री फंसे हैं। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग के विभिन्न जगहों पर फंसे यात्री और स्थानीय लोगों के परिजनों के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मोबाइल नंबर 7579257572 और लैंडलाइन नंबर 01364233387 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। श्री धामी ने राहत शिविरों में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और कहा कि पूरे उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5,000 है और जो लोग अभी बचे हुए हैं 1,000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य को पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। इस बीच केदारनाथ में बारिश और भूस्खलन में फंसे गुजरात के 17 तीर्थयात्रियों को सफलतापूर्वक बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में विभिन्न इलाकों में तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों को ढूंढने के लिए बचाव अभियान जारी है। NDRF, SDRF, पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में बीते 31 जुलाई की रात भारी वर्षा व बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन आज सुबह फिर से जारी है। गौरतलब है कि प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी में बादल फटने की घटनाओं से जान माल को भारी क्षति पहुंची है और कुल 55 लोग लापता हैं, जबकि 2 की जान चली गई है। इस बीच कुल्लू जिले के मलाना डैम में फंसे शेष 4 लोगों को भी बचाव दल ने आज सुरक्षित निकाल लिया है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल रवीश ने बताया कि इन सब की हालत स्थिर है। बादल फटने की इन घटनाओं में जिला शिमला के रामपुर उपमंडल का समेज क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और यहां 36 लोग लापता हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया है कि इन्हें ढूंढने के लिए 85 किलोमीटर तक के क्षेत्र में विशेष सर्च अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रामपुर के आपदा प्रभावित समेज क्षेत्र का दौरा कर प्रभावितों और लापता लोगों के परिजनों से मिलेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड में युद्धस्तर पर तलाश अभियान जारी है। मंगलवार को आई प्राकृतिक आपदा से कथित तौर पर अब तक लगभग 300 लोगों की जान चली गई है। एक रिपोर्ट।
सशस्त्र बलों के नेतृत्व में चल रहे तलाशी अभियान के चौथे दिन सेना ने पदावेटी कुन्नू क्षेत्र से चार लोगों को बचाया। इनमें एक महिला और एक लड़की शामिल है जिन्हें हवाई मार्ग से ले जाया गया। चूरलमाला, मुंडकई, अट्टामाला और चलियार नदी तट के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी है। इन 40 टीमों में 1500 से अधिक बचाव कर्मी है। मिट्टी और चट्टान तथा बोल्डर और उखड़े हुए पेड़ों के विशाल ढेर के बीच भारी मशीनों, स्नाइपर कुत्तों आदि के मदद से खोज अभियान आगे बढ़ रहा है। वायनाड में इस समय 91 राहत शिविरों में 9000 से अधिक लोग हैं। वायनाड से अरुण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आदर्श, आकाशवाणी दिल्ली।
मौसम विभाग ने झारखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिणी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमासेन रॉय ने कहा है कि पश्चिमी प्रायद्वीपीय इलाके में तेज वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में चक्रवाती प्रभाव पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र से पश्चिम की ओर बढ़ेगा।
अभी का जो मौसम का जो हालत है, एक लो प्रेशर बन चुकी है बंगाल झारखंड के रीजन में। उसका जो साउथ वेस्ट सेक्टर है उसमें अभी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो रही है और अगले 2 से 3 दिन तक इसका जो लाइफ टाइम रहेगा और इसका नॉर्थ वेस्ट वाइड मूवमेंट होगा, उसके साथ साथ ये जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का जो बेल्ट है धीरे धीरे वेस्ट वाइड शिफ्ट होगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट में किसानों की भलाई के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया गया है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कृषि कार्यों के लिए 1,32,000 करोड़ रूपये से अधिक राशि निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2013-14 में आवंटित धन से 27,000 करोड़ रूपये अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर और महान स्वाधीनता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश को तिरंगा दिलाने में पिंगली वेंकैया के प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करने और इस महीने की 9 से 15 तारीख के बीच तिरंगा फहराने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बात कर ईरानी खतरों का मुकाबला करने के लिए नई अमरीकी सैन्य तैनाती पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकवादी समूह हमास, हिजबुल्ला और हौथी सहित ईरान से सभी खतरों के खिलाफ इसराइल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पेरिस ओलंपिक्स के 7वें दिन कई भारतीय खिलाड़ी आज निशानेबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, जूडो, हॉकी और एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज शाम 6:30 बजे लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के चाओ तियेन चेन से होगा। पुरुष हॉकी के पूल मैच में आज शाम 4:45 पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं जूडो में अब से कुछ देर बाद महिलाओं के 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के राउंड ऑफ 32 मैच में तुलिका मान का सामना क्यूबा की इडालिस ऑर्टिज से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल सहित इस श्रेणी के सभी मैच आज ही होंगे। एथलेटिक्स में रात 9:30 बजे के बाद पारुल चौधरी महिलाओं की 5,000 मीटर क्वालिफिकेशन राउंड में और रात 11:30 बजे के बाद तेजेंद्र पाल सिंह तूर पुरुषों के शॉटपुट क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगे। गोल्फर गगनजीत भुल्लर और शुभंकर शर्मा तथा नाविक नेथरा कुमानन और विष्णु सर्वनन भी अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कोलंबो में हो रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू। केरल में भूस्खलन से प्रभावित वायनाड में तलाश अभियान जोरों पर, मृतकों की संख्या 300 हुई। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी। हिमाचल प्रदेश में भी लापता लोगों की तलाश जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के खतरों से इसराइल की सुरक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय तीरंदाज मिक्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज शाम भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सामना चाओ तियनचेन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।